सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वदेशी उपकरणों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते रक्षा क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व उपसेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साहा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार मयंक सिंह।
आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से जो हमारी मारक क्षमता है सेनाओं की और सेना का जो तंत्र है उसका इंडिजनाइजेशन हो रहा है और बदलते वक्त का जो कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर जिस तरह से चेंज हो रहा है, जिसमें कि तकनीकी तौर पर बहुत सारी बातें होती हैं हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर की, उन सब चीजों को समाहित करके आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर को आधार बनाकर किस तरह से भारतीय सेना और इंडिजनाइजेशन ने भारत की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत किया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, जो कि हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कि हमारे जो भारत के रक्षा उत्पाद केंद्र हैं, भारतीय जो कंपनियां हैं जो उसमें समाहित की गई विकास में, इनोवेशन में और ग्रोथ में, उन सब के बारे में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो आइए स्वागत करते हैं।
धन्यवाद आपका।
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई तरह से और जो हमारे सेना के अलग अलग अंग के जो चीफ हैं वो भी इन पर बातें कर चुके हैं, सीडीएस को लेकर भी उसमें इंडिजनाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो ऑपरेशन सिंदूर को आधार बनाकर अगर आप देखें तो इंडिजनाइजेशन का क्या रोल रहा और कैसा महत्वपूर्ण रहा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
जी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पहला सवाल है मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि पहली बार एक अच्छा प्रदर्शन रहा हमारे इंडिजनाइज्ड भारतीय हथियारों का, भारतीय सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। क्यों? ये जो आप देख रहे थे हमारे पूरे बॉर्डर का, जम्मू कश्मीर से लेकर भुज तक पूरे बॉर्डर में जगह जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही थे, कहीं पे मिसाइल, कहीं पे ड्रोन्स, खास करके छोटे बड़े मीडियम ड्रोन्स जो जगह जगह पर काफी गहराई तक जो पाकिस्तान के ड्रोन्स ने आकर के, कई जगह पर स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स ने आकर के जो हमला करने की कोशिश की, उस सारे हमलाओं को जो बिल्कुल रद्द किया, जो बिल्कुल फॉयल किया, डिसरप्ट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, ये पूरा जो एक डिफेंस सिस्टम का फ्रेमवर्क जो था ये हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम द्वारा किया गया है। और ये इंडिजिनस वेपन सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड था जो हमारे पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारा मॉडर्न सिस्टम जो हमारे अपने डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है और हमारे जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है इन्होंने उसको मैन्युफैक्चर किया। मैं खास करके बात कर रहा हूँ आकाश तीर की, जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारा DRDO ने इसका डिजाइन डेवलप किया, उसको काफी सालों से रिफाइन करते करते एक ऐसे दर्जे तक पहुंचा है कि देखिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% फुल प्रूफ एक एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने आपके सामने बिल्कुल डिस्प्ले करके दिखाया। इसको आप अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करिए, देखिए किस तरह से हमारे वेपन्स और मिसाइल सिस्टम्स ने जा करके एक एक करके, चाहे वो शुरू शुरू के टेररिस्ट टारगेट्स हो साथ, और बाद में जो आपने देखा उनके एयर बेसिस हो, कितनी आसानी से पेनिट्रेट करके उनको उसके ऊपर डिस्ट्रॉय किया। और एयर बेसिस के ऊपर जब हमला हुआ और उसके ऊपर जिस प्रकार का डिस्ट्रक्शन हुआ, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, तो आप इससे ज्यादा, इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है हमारे इस इंडिजनाइज्ड वेपन सिस्टम की शक्ति का।
जनरल साहा ने एक महत्वपूर्ण बात जो सामने लाई उसमें उपयोग था ड्रोन्स का और एयर डिफेंस वेपन्स का, मिसाइल्स का, वो ये भी संकेत देता है कि किस तरह से आज कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है और शायद इसी का मुजाहिरा हुआ जिस तरह से चीजें ड्रोन का उपयोग करके एक देश ने जो कि यूक्रेन है किसी दूसरे देश पर जाकर के उनके बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया। जनरल साहा, हमारे जो श्रोतागण हैं उनकी जानकारी के लिए अगर हम आपसे जानना चाहें, समझना चाहें कि जो कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है जहां कि हम पहले आप 15 कोर के भी कमांडर रहे हैं अपने वक्त में, जहां लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा दायरा है वहां पे, इन चीजों को और जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है और जो आज नीच टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर है, इन तीनों को मिला करके अगर आप समझाना चाहें कि किस तरह से कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर चेंज हुआ है, तो श्रोताओं को इसका बड़ा फायदा होगा। इसके विषय में थोड़ा बताएं जनरल साहब।
जहां तक हमारा कंटेक्स्ट है, हमारा जो माहौल है वो एक यूनिक टाइप का माहौल है। मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे नॉर्थ में चीन और हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, ये दोनों देश, दरअसल इन दोनों के बीच में एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल आपस में मिल करके ऑपरेट कर रहे हैं। और आपको पता ही है 1947-48 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि किसी तरह से सब कन्वेंशनल, माने कन्वेंशनल कोर के नीचे रह करके थ्रेशोल्ड, दायरा ना पार करते हुए किस तरह से भारत को, मतलब एक हर एक, जो पहले इनका एक डायलॉग था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत को 1000 कट्स दे करके तो उसके ऊपर नुकसान पहुंचाते रहो लेकिन कन्वेंशनल वॉर के थ्रेशोल्ड से नीचे रहो, यही इनकी नीति रही है 1947-48 में। 65 में जब वही कोशिश किया था इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में, जब वो फेल हो गए। 89 में जब जिया इनके प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया कि भाई अब तो हम जो हथियार हमारे पास में बच गया है रूस के खिलाफ लड़ते हुए, हम उनका इस्तेमाल करके कॉन्स्टेंटली ये किए जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब वगैरह में ये लड़ाई चलाते रहेंगे सब कन्वेंशनल। अब इसी को एक्सप्लॉयट करते हुए वो कोशिश अपनी जारी है और समय समय पर चीन उसके साथ मिल करके एक्सप्लॉयट करता है, वही चीज स्ट्रेटजी हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर लोग करते हैं। यही बेसिकली हमारे साथ में तो ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो आप बोल रहे हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर जो आप कह रहे हैं कि ना पीस ना वॉर, बीच वाला जो ग्रे जोन है उसको एक्सप्लॉयट करके वो अपने एडवर्सरी को हमेशा एंगेज रखते हो, ना पीस में है ना कन्फ्लिक्ट में, और इसके जरिए आप अपना पॉलिटिकल एम जो है आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। आजकल ये ग्रे जोन वॉरफेयर में नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, नई टेक्नोलॉजीज में खास करके जो आपका साइबर वॉरफेयर आ गया है, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमेशा ही था, सोशल मीडिया के आने से, डिसमिनेट करने के अलग अलग तरीके आने की वजह से उसमें एक नया किस्म का ताकत आ गया है। अब जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज एक किस्म से वॉरफेयर में शामिल होना शुरू हो गया, जैसे हम यूक्रेन में देख रहे हैं कितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डेटा मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में बिल्कुल फ्रंट लाइन तक इन्वॉल्व है। अब जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज वॉरफेयर में आ जाती है, वो चाहती है कि हम जो कर रहे हैं लड़ाई के मैदान में वो और लोगों को पता हो कि ताकि उनका जो कैपेबिलिटी है वो और लोग देखें और उनकी कैपेबिलिटी जो है और बिके, तो नेचुरली वो उसको अलग तरीके से पब्लिसाइज करना चाहते हैं। तो ये सब मिल करके ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है उसका एक मिलिट्री डायमेंशन है, उसका एक बिजनेस डायमेंशन है और एक पॉलिटिकल डायमेंशन है। इस तरह की लड़ाई के लिए जो है इंडिजनाइजेशन बहुत ही जरूरी है, क्यों, अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड करके ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करें तो अब हम कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्यों, आज वो आपको बताएगा, कल को यही चीज वो आपके एडवर्सरी को ही बता देगा। अभी आप देख रहे हैं इस बार भी हमारी तरफ से अगर हम रफाल उड़ा रहे थे, साइड से F-16 जो कि अमेरिका का है और दूसरी साइड से चाइना का JF-10, अगर आप ग्रे जोन में इस तरह की इंपोर्टेड कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करें, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। इसमें हर एक चीज का एक कैपेबिलिटी मोस्टली होना चाहिए। ग्रे जोन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज हैं ये कोई ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये देश के अंदर होना चाहिए। प्लस हमारा जो देश का कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बोल लीजिए, इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक बेस जो है बहुत एडवांस्ड है
जी।
इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यू नो bringing it all together। जैसे आजकल हम involved हैं एक consortium of IITs को लेकर के, हम उसे Manekshaw Center of National Security Studies and Research बोलते हैं, तो हमें पता है कि कितनी capability हमारे देश के अंदर में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको किस तरह से कंसोलिडेट करके इस तरह के रिसर्च और स्टडीज में डिवोट किया जाए। इस डोमेन में हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी हालत में किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, एंड वी हैव टू, जो मेरा फेवरेट हमेशा रहा है एग्जॉर्टेशन की, वी हैव टू विन इंडियाज वॉर्स विद इंडियन सॉल्यूशंस। इसके अलावा और कोई दो रास्ता नहीं है हमारे पास।
जनरल शाह ने जिस तरह से ग्रे जोन वॉरफेयर की बात की और वहां एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर आए कि जो भारत का युद्ध है वो भारतीय जो साजो सामान है उन्हीं से लड़ा जाए, इसमें बहुत सामरिक पहलू है जो चीजें सामने आ रही हैं और इस पर बहुत ध्यान दिया गया है भारत में, चाहे वो जो हमारे सेनाओं के स्ट्रक्चर है उनको बदलने की बात हो या फिर जिस तरह से जोड़ा गया है हमारी जो डिफेंस पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपस में जोड़ा गया है ताकि जो भी साजो सामान है चाहे वो सामरिक स्तर का हो, नीच टेक्नोलॉजी हो, वो सब भारत में ही प्रोड्यूस हो सके। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री सेनाओं के अलग अलग अंगों से मिल रहे थे, वो एयरबेस पे जब गए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार भारत में बने हुए या भारत की सेना में जो सम्मिलित वेपनरी है, मिसाइल्स है, उन्होंने कैसे रक्षा और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया था।
ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है।
भारत की सेनाओं का जो युद्ध का तंत्र है वो आज बदला जा रहा है और आने वाले वक्त में जो कमांड का स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में बदला जाएगा, वो भी इसी इंडिजनाइजेशन का एक पहलू है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो जो यह विदेशों में साजो सामान हमारे भारत द्वारा भेजा गया था या विदेशियों ने हमसे खरीदा था वो था 2016-17 में लगभग 1521 करोड़ के करीब, जो आज 2024-25 का बढ़कर हो गया है 23,622 करोड़। एक बात जो जनरल शाह ने आप सबके सामने रखी श्रोतागण वो थी कि भारत का युद्ध भारतीय साजो सामान से ही जीता जाए। उसमें महत्वपूर्ण सामरिक पहलू यह है कि अगर कोई दुश्मन, कोई देश आपसे नाराज होता है तो आपकी सप्लाई लाइन को वो रोक ना सकेगा, लेकिन इसको बेहतर समझते हैं जनरल शाह से जिन्होंने इस पहलू पर लंबे समय तक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है।
देखिए जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, यूनिवर्सिटीज है, इंडस्ट्री बोथ पब्लिक और प्राइवेट और आर्म फोर्सेस, जो आपस में जो कोलैबोरेशन है जिस तरह से वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इससे हमें सबसे मजबूत फाउंडेशन मिल रहा है इस मुद्दे के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं विन इंडियाज वॉर्स विद इंडियन सॉल्यूशंस, जो हमारा एक स्टैंडर्ड टू फ्रंट जो सिनेरियो बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में कितने देशों में है, एक साइड ऊंची पहाड़ियां हाई अल्टीट्यूड और दूसरी साइड में रेगिस्तान, एक साइड हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है +40-48 तक चला जाता है और दूसरी साइड में हमारा टेम्परेचर -50 तक चला जाता है। ये कितने देशों, कितने बॉर्डरों इस तरह का सिनारियो है, तो ये सब यूनिक है हमारे लिए। तो हमें जो है अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचना है, जो हमारी सोच है विन इंडियाज वॉर्स विद इंडियन सॉल्यूशंस, उसमें हमें ऑटोमेटिकली लाना पड़ेगा। दूसरा जो एक नेशनल पॉलिसी है कि हम चाहते हैं हमारे आसपास के देश के साथ में जो एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तभी हम इसमें कामयाब होंगे जब हम शक्तिशाली हैं। दूसरा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है। जब देश विकसित होगा, उसे कई एस्टिमेट है, कोई कहते हैं 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कोई कहते हैं 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट उस फिगर को सेफ गार्ड करने के लिए हमें एक शक्तिशाली देश बनना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हैज टू बी अंडर गर्डेड बाई ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस, बिकॉज अगर आप पावरफुल नहीं हुए तो फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को कौन गार्ड करेगा। इन सब कंबाइन करते हुए हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी एडवांस करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, बाहर की जो ताकतें हैं वो कोशिश करते हैं कि ये जो एक कंपैरेटिवली इजियर सिस्टम जो एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम ओरिएंटेड सोसाइटी में होता है उसमें आकर के पेनिट्रेट करके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए एक इंटरनल एक ताकत भी देश के अंदर में बहुत जरूरी है जो कि सेफ गार्ड करे इस तरह के जो शैल वी से एलिमेंट्स दैट आर एंटी नेशनल उनके अगेंस्ट। तो इन सबको माइंड में रखते हुए हमें वो कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, खास करके जो अब ग्रे जोन की बात कर रहे हैं, दिस न्यू कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर, जो कि आपके हर वीकनेसेस को देख करके हर समय पर आपके कोशिश करता है कि कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेगा और अपने पॉलिटिकल एम्स जो है अचीव करने की कोशिश करता है।
इस तरह के अलग अलग पहलुओं को हम आगे भी छूते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे स्वदेशी उपकरणों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते रक्षा क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व उपसेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रत साह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार मयंक सिंह।